Sayam Kunda, Radhakunda, Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavanam Ki Jai, Maturam Ki Jai, Navadeepdam Ki Jai, Jagadathasami Ki Jai, Yuvanamai Ki Jai, Shivani Dalasi Devi Ki Jai, Service. Harau, Antahuri, Bhagavati, the Supreme Personality of Godhead. Prabhahan, constantly engaging in. Ajasram, always. Ananda, blissful. Aren't you going to translate these things? Yeah, that's what you got. The Bhagavatam. Microphone. Blissful.
Ananta Bharpur.
Bashbakaleha,
Bashbakaleha,
by a stream of tears,
and ki net aasu ke netro ki dhara,
moho,
moho,
again and again,
baramba,
arjamanaha,
arjamana,
being overcome,
uske upar parajay,
viklidjamana,
vidhikmana,
melting,
pigal jana.
Vidayaha,
Vidayaha,
his heart,
his hirday,
Pulaka,
Pulaka,
standing of hairs,
Roa Pulkeman Hona,
Achita,
Achita,
covered,
Dhaka Hua,
Angaha,
Angaha,
his body,
Unka Sharir,
Na,
Na,
not,
Nahi,
Atmanam,
Atmanam,
body,
Sharir,
Asmarat,
Asmarat,
he remembered.
Unko yaad kiya.
Asau,
Asau,
he.
Wahi.
Iti,
Iti,
thus.
Unone.
Muktalingaha,
Muktalingaha,
free from the subtle body.
Apna shuksham sarir se pare ho gaye.
Translation: because of his transcendental bliss, incessant tears flowed from his eyes, his heart melted, and there was shivering and standing of the hairs all over the body. Thus transformed in a trance of devotional service, Dhruva Maharaj completely forgot his bodily existence, and thus he immediately became liberated from material bondage.
यहाँ पर दुर्गा महाराज जी के बारे में बता रहे हैं तो वो दीप्ता से प्रेम के अनंत से विभोर हो गए थे उनके नेत्रों की धारा बहने लगा उनका हृदय जो है वो पिघल हो गया और उनके रोआ पुल के मान हो गया और उनमें दीप्ता आ गया और उससे बदलाव हुआ कि ध्रुव महाराज अपने शरीर से भी परे हो चुके थे और संसारिक हर एक बंधन से वो मुक्त हो चुके थे.
So I think because this is a long purport, you just do it in Hindi. So we don't have to do the English. Okay, so just read the purport to them in Hindi. Can you do it?
Yeah.
Okay.
You read it?
No, because it'll take too long. So just do the Hindi. It's a pretty long purport.
क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के भक्ति में लीन हो चुका था भगवान के नाम जपन कीर्तन जो नौदा भक्ति है उसमें लग चुके थे और नौ प्रकार की भक्ति है
Unmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who has so kindly opened my eyes with a torchlight of knowledge while I was blinded in the darkness of ignorance.
Guru Maharaj keh rahe hain, main apne guru ke charno mein pranam kar raha hoon, jiske gyan ke dwara mera agyanta ka nasht hua hai aur mujhe prakash mein laya.
So what we are hearing described here are something called the bhavas.
Aap jo aaj sun rahe hain isko kehte hain bhav.
And these are the bhavas, of course, of someone who is on a very advanced or pure devotee platform of devotional service.
Ye jo bhav hai ye bataya gaya hai jo prani jo bhakt bahut uch koti ke star par pahunch jata hai tab ye bhav ka lakshan prakat hoti hai.
So the acharyas, such as Srila Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and others, have analyzed and categorized these different bhavas.
So, आप देखेंगे जो महान महान भक्त हैं जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ये सब लोग में जो भाव है ये उनमें प्रकट थे.
So the first bhava is called vibhava.
तो पहला जो भाव है उसको कहते हैं vibhava.
Vibhava means that particular experience which stimulates the other emotions.
तो बी भाव का मतलब है कि ये जो हमारे में अनुभूति होता है वो और गहरा अनुभव आगे चलकर उसको प्रकट करता है.
Let me give a material example of what I mean.
मैं एक संसारिक उदाहरण दे रहा हूँ.
Let's say you ladies, you see your little baby.
जैसे जितनी माताएं हैं अपने बच्चे को देखते हैं.
And tears come to your eyes because of seeing that baby.
अपने बच्चा को देखने के पश्चात आपके नेत्रों की धारा बहने लगता है.
So what stimulates you is the sight of the baby.
ये जो आपके नेत्र में धारा आया क्योंकि तुम्हारा बच्चा के प्रति जो लगाव है वो प्रकट किया.
And then the response to that is which is called an anubhav is the crying.
और उसका परिणाम क्या है? बच्चा को देखा, वो लगाव जो बच्चा को देखा उसका परिणाम हुआ आपके नेत्रों की धारा बहने लगा.
In Sanskrit that's called alambana, the direct let's say manifestation of your devotion is stimulating your emotion.
तो उसको आलंबना कहते हैं, मतलब आपने जैसे उसको देखा तो वो आपके भीतर से अनुभव प्रकट होता है.
And so let's talk about something called udipana, where the indirect manifestation of your love is stimulating your emotion.
एक और उदीपना कहते हैं, यानी कि जो प्रेम वो कैसे indirectly, यानी कि तुरंत नहीं, वो indirectly रूप से आप उसको अनुभव करोगे.
Let's say you have a little baby, but then instead of seeing the baby, you see his shoes.
अब है तुम अपने जो बेबी है उसका जो जूता है वो आपने देखा.
And then you start crying because it reminds you of the baby.
तो तुमने जूता को देखकर अपने बच्चे को याद हुआ और तुमने रोने लगा.
So the same thing happens with pure devotees in relationship to Krishna.
उसी तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान के साथ रिश्ता में यही प्रकट होते हैं.
When they see Krishna directly, they go into all these symptoms of ecstasy, the anubhavs, like drooling from the mouth, tears coming from the eyes like torrents of rain.
और ऐसे ही जैसे भगवान के ही शुद्ध भक्त जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं यही आठ सद्विका विकार उनमें प्रकट होने लगता, नेत्रों की धारा बहने लगता, रोआ पुलकमान होता.
Just like we have this song, Gauranga Balite Habi Pulaka Sharir. When I hear the name of Gauranga, then all the hairs on my body stand up and I cry in ecstasy. Hari Hari Balite Nayani Babi Nir.
जैसे गुरु महाराज ने जो भी कीर्तन गाया, गौरंगा बोलते है वे पुलक सरीरा, कि मैं कैसे जैसे गौरंगा जी का नाम लूंगा मेरा रोआ पुलकमान, नेत्रों की धारा बहने लगेगा.
So that's a vibhav. That which stimulates your emotion in relationship with Krishna.
यानी कि विभाव तुम्हारा जो भावना है वो कृष्ण के प्रति और तेजस्वी कर देता है.
And then the indirect stimulation in relationship to Krishna is, let's say, when you see a peacock fan.
और जो बाहर का है वो भीतर का था. बाहर का समझो कृष्ण को नहीं देखा लेकिन कृष्ण जी का मोर पंख देख लिए.
For example, there's this story of this great devotee of Chaitanya Mahaprabhu, his name was Mukunda.
Ek Chaitanya Mahaprabhu ka bahut mahan bhakt tha, uska naam tha Mukunda.
And he was serving the Muslim king at a particular time.
Us samay Mukunda bhakt jo hai wahan ke jo musliman raja tha usko seva pradan kar rahe.
Because he was a doctor.
Kyunki wo vyapar se wo ek doctor tha.
And so then someone came up and started fanning this Muslim king with a peacock feather, with a peacock fan.
तो उसी समय उस राजा के पास कोई मोर पंख लेकर उसको पंखा करने लगा.
And then he immediately fell down from the platform that he was on and dropped to the ground in ecstasy when he saw the peacock fan because it reminded him of Krishna.
लेकिन मुकुंडा वहीं पर बैठा था ऊंचे स्तर पर. उसने देखा खाली मोर पंख, तुरंत उसको भगवान श्री कृष्ण याद आ गया, विभोर हो गया और जिस तार पर वो बैठा था वहां से वो गिर जाता है.
So the Muslim king rushed down and said, "What's the problem?"
तो जो मुसलमान राजा था पूछा क्या हुआ?
And he said, "Oh, no problem, I have epilepsy."
और उसने कहा नहीं मुझे कावर नहीं कावर मिर्गी आने लगा.
And so he was trying to hide the fact that he was a pure devotee from the Muslim, because you don't want to commit the offense on the holy names where you tell the glories of the holy name to those who are envious.
लेकिन उस समय मुकुंड जी ने क्या किया, उसको ऐसा नहीं बताया, वो ढाकना चाहता था अपना शुद्ध भक्ति, क्योंकि अगर मैं इसको भगवान के नाम देता तो ये तो तैयार नहीं स्वीकार करने, तो अपराध हो जाता।
सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, दीज स्टिम्युलेशंस, द इनडायरेक्ट एंड द डायरेक्ट स्टिम्युलेशन, दे अफेक्ट प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड।
तो ये जो भाव है हमारा भीतर का बाहर का भगवान के प्रति, ये भक्त उसको अनुभव करता है।
One time we were with Prabhupada, and generally Prabhupada hid his ecstatic symptoms.
Guru Maharaj keh rahe, main ek baar Srila Prabhupada ji ke tha, aur Srila Prabhupada mein ye jo ast vikar hai usme tha, lekin Srila Prabhupada ji isko dhaak ke dhare the.
So Prabhupada arrived at a temple and he saw Gaur Nitai.
Srila Prabhupada ji jab mandir aaya to Gaur Nitai ji ko dekha.
And then Prabhupada started chanting this song. Paramakarana Pohujvijanam Nitai Gaurachan, which means the most merciful Lord, Lord Chaitanya and Lord Nityananda.
Aur Srila Prabhupada ji un vigraha ke aage aakar kirtan gaane laga ki he sabse mahakaruna Bhagwan Nityananda aur Gauranga Mahaprabhu.
And then Prabhupada immediately became unconscious.
Aur usi samay Srila Prabhupada ji murchit ho gaya.
They went into trance.
Aur bataya gaya hai हैराई में चला गया भक्ति।
And the devotees didn't know what to do.
और वहाँ जितने भक्त था सबको मालूम नहीं कि क्या हम करें।
And after a few minutes, they started chanting Hare Krishna, and then Prabhupada came back to external consciousness.
तो थोड़ी देरी बाद सब भक्त लोग ने जब कीर्तन शुरू किया तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने वास्तविक निज रूप में आया।
And then they asked Prabhupada, "What should we do when this happens?"
तब सभी भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा कि हम क्या करें उस समय।
And Prabhupada, he basically said, basically he was apologetic. Oh, this doesn't happen very often, don't worry.
Aur Srila Prabhupada ji kehne laga, hame shama karna, ye har samay nahi hota hai.
Because the pure devotee holds back these symptoms of ecstasy because people will take it cheaply if he does it.
Kyunki jo shuddh bhakt rehta hai, uski jab dip lakshan prakat hone lagta hai, wo usko apne mein samet leta hai. Wo dikhana nahi chahta kisi ko.
Just like there's an interesting story about Haridas Thakur.
जैसे हरिदास ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कथा है।
One time, once upon a time, there was a person who was doing a snake dance.
एक समय क्या हुआ? एक व्यक्ति था जो वो सर्प की तरह नृत्य कर रहा था।
And he was glorifying Anantashesh, who was the original snake, Seshanaga.
और वो व्यक्ति जब नृत्य कर रहा था तो अनंतशेष की गुणगान कर रहा था।
And Haridas Thakur was watching this.
Haridas Thakur usko dekh raha tha.
And he became so ecstatic, he started dancing in ecstasy, fainting and everything like that.
Lekin Haridas Thakur usko dekhkar wo murchit ho gaya, nachne laga, koodne laga, vibhor ho gaya.
And the snake charmer understood that this was a pure devotee who was actually exhibiting the bhavas.
लेकिन जो वो सर्प के आगे नाच रहा था वो तुरंत पहचान कर लिया कि ये भगवान का बड़ा शुद्ध भक्त है, क्योंकि इसमें भाव प्रकट हो गया।
And he bowed down to Haridas Thakur, and everybody bowed down and touched Haridas Thakur's feet.
सभी लोग हरिदास ठाकुर के फिर चरण स्पर्श किया।
So at the same time there was a Brahmin watching the whole thing.
लेकिन वहीं पर एक ब्राह्मण था ये भी देख रहा था।
And the Brahmin was thinking, "Hey, I want everyone to touch my feet."
लेकिन वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता था, वो बोला, "अरे, हमारे चरण आके छू."
Why are they respecting this person who was born in a Muslim family? I'm going to do the same thing he did, and then they will bow down to me and give me donations.
और वो ब्राह्मण देवता कहने लगा, "अरे, इसके चरण क्यों पकड़ रहे हो? ये तो तुच्छ एक मुसलमान परिवार में जन्मे हैं. अरे, मैं भी वही कर सकता हूँ. मेरा चरण आकर छू और मुझे धन दो."
So then this Brahmin imitated Haridas Thakur, started dancing and rolling on the ground and crying and everything like that.
और ये ब्राह्मण देवता ने फिर नाचने लगा, मट्टी में लोटने लगा, रोने लगा।
And so then the snake charmer understood it was an imitation and he kicked the Brahmin.
और वो जो सर्प के आगे नाचने वाला नृत्य करने वाला व्यक्ति जान गया ये नाटक कर रहा है और अपने पैरों से प्रहार किया।
And so he kept kicking, kicking, kicking the Brahmin.
और वो बारंबार उस ब्राह्मण को फिर अपने पैरों से प्रहार करते गया।
So you know in India that when you touch someone with your feet, it's considered a big offense.
भारतवर्ष में कोई अपने पैर से किसी को छूता है तो बहुत बड़ा अपराध माना गया है।
If you really want to offend someone, you throw your shoe at them.
कोई के वास्तविक में तुम बहुत निरादर करना चाहते हो, अपराध करना चाहते हो, तो उसके ऊपर जूता भी दीजिए.
Don't do that.
ऐसा कदाचित मत करना.
So anyway, so then the Brahmin said to the snake charmer, "Why did you kick me? I was simply feeling, actually doing what Haridas Thakur did." And the snake charmer said, "You were doing it for imitation, trying to achieve something material."
वो जो सर्प के नर्तिका है, वो उससे पूछा ब्राह्मण, तू मुझे क्यों मारा ऐसा?
I said more than that. Usually you say more than me. Now you're saying less than me. All right. You don't have to try. No, I understand. I understand. I'm just teasing. So anyway, so this imitation is not really a symptom of ecstasy.
ये जो नकलीपन है, ये हमारा निज भाव का प्रदर्शनी नहीं है.
Although sometimes even someone who is not a devotee can experience some ecstasy.
कभी कभी कोई भक्त नहीं है, कुछ कुछ हमारे में भगवान के प्रति वो भाव है, वो प्रकट हो सकता है.
That's described in the nectar devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, as dried up or burnt up ecstasy that even an impersonalist sometimes.
तो ये भक्ति रसमिंदर सिंधु में बड़े सुंदर से कहा गया है कि ये झूरा हुआ हमारा जो भक्ति है उसका प्रदक्षिणी है.
Just like one time we were having a big festival. It was in a city called San Diego.
एक बार गुरु महाराज कह रहे, बहुत बड़ा उत्सव हम लोग बना रहे थे अमेरिका में.
And we were chanting Hare Krishna. All the devotees were in complete ecstasy chanting Hare Krishna.
और सभी भक्त लोग विभोर से भगवान के नाम जप कर रहे थे.
And then a non-devotee walks by the festival.
और क्या हुआ, एक बगल में से कुछ लोग जो भक्त नहीं थे वो गुजर रहे थे.
And I was distributing books at that time.
श्रील गुरु महाराज जो है उस समय पुस्तक का वितरण कर रहे थे.
And he said, first thing he said to me is, why am I feeling so much ecstasy?
और उस व्यक्ति जो भक्त नहीं था, गुरु महाराज से कहने लगा, मुझ में क्यों ये दीप्ता आने लगा, मैं कैसे ऐसे क्यों अनुभव कर रहा हूँ?
Are you devotees burning marijuana or something?
कि तुम भक्त लोग ये कुछ मरिजुआना जो है ना, ये इसको ग्रहण तो नहीं कर रहे हो?
And then we are breathing the marijuana in.
कि तुम लोग उसको सूंघते हो?
And I said, no, it's due to the holy names.
गुरु महाराज ने कहा, नहीं, ये मरवाना के जरूरत, ये भगवान के नाम की महिमा.
So such is the potency of the holy name that even if there is ecstatic kirtan, ecstatic Bhagavatam recital, or some pure devotee present, then one can experience symptoms of ecstasy even if one's not a devotee.
तो बताया गया कहीं पर एक शुद्ध भक्त है या भगवान के नाम अगर दीप्ता से लिया जाए तो हमारे में वो जो विभोरता है वो हम अनुभव करेंगे उसी समय.
But unless one takes up devotional service, that ecstasy doesn't continue.
लेकिन जब तक ये भक्ति को तुम स्वीकार नहीं करोगे, वो निरंतर आपके पास नहीं रहेगा.
So there's other types of bhavas. We're going to talk about them very quickly.
और भी रकम के भाव हैं, गुरु महाराज जल्दी जल्दी बात बताएंगे.
I mentioned the vibhava, which is the thing that excites you. Then there's the anubhava that follows the emotion that naturally follows the vibhava.
तो पहले मैं विभावा के बाद बताया हूँ, फिर उसके बाद मैं अनुभाव के बाद बताया हूँ, जिसके विभाव के बाद में अनुभव आता है.
And then there's the sattvic bhavas, the asta, there's eight emotions that are naturally part of a devotee's constitution, being in the mode of goodness.
उसके बाद में जो आठ रकम के भाव रहते हैं जो हमारे में प्रकट होते हैं, जैसे रोआ पुल के मान, नेत्र के धारा बहना, शरीर के रंग बदलाव हो जाना.
And finally, there's called something called vyabhichari bhava or sanchari bhava, same thing.
और उसके बाद में जो अंतिम है उसको vyabhichari bhava कहते, जो संचिंत भाव कहते,
संचारी
भाव कहते.
And this, there are 33 of those, and they are so intense that they come without a devotee even knowing they're coming, and they overwhelm a devotee.
और 33 और है उसमें जो बताया गया है संचारी भावा के भीतर, जो आप जो दीप्ता को अनुभव करोगे उसके भीतर.
I mean, they're like complete unconsciousness or practically dying or losing control of oneself due to emotions.
और वो स्तर पे जब आप चला जाओगे तो आप एकदम मूर्छित हो जाओगे, यहाँ तक भी तुम अपने प्राण दे सकते हो, यानी कि तुम ये देह में रह नहीं पाओगे, तुम्हारा चित्त इससे परे हो जाएगा.
I'll give one example of that.
एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ.
Once upon a time, Krishna was with Radharani.
एक समय में क्या हुआ, श्रीमती कृष्ण भगवान राधारानी जी के साथ थे.
And Madhu Mangal was there.
और वहाँ पर भगवान के सखा मधु मंगल था.
At the same time, there was a bee that was bothering Srimati Radharani.
उसी समय क्या हुआ, एक मधुमक्खी जो है राधारानी को तंग कर रही थी.
And it was just hovering around, and she was pushing it away.
और राधारानी के शरीर में आ रहा था, राधारानी अपने हाथों से उसको भगा रहा था.
So we all know that Krishna's name is Madhusudana.
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन.
So in Sanskrit, Madhu also means bee.
और संस्कृत में मधु को मधुमक्खी भी माना गया है.
So Madhu Mangal, he chased this bee away.
और मधुमंगल जब आया वहां पर तो मधुमक्खी को वो भगा दिया.
And then he said to Radharani, Madhu is gone.
और फिर मधुमंगल आकर श्रीमती राधारानी से कहने लगा, चिंता मत होइए, मधु चला गया.
So Radharani thought, Srimati Radharani thought that Krishna Madhusudana was gone.
लेकिन श्रीमती राधारानी ने कुछ और सोचा, उसने सोचा कि मधु सुधांत चला गया.
So she started crying and fell unconscious.
और श्री राधारानी ऐसे सुना तुरंत विभोर हो गई और नेत्रों के धारा बहने लगी.
And then when Krishna saw that happen to Radharani, because Krishna was still there, he also became unconscious.
और तुरंत कृष्ण भगवान वहीं पर था, राधारानी की उस स्थिति देखा, भगवान भी बताया गया है, वो भी विभोर होकर मूर्छित हो जाता है.
Now this is an instance of one of the vyavachari or sanchari bhavas.
ये व्यभिचारी या तो संचिंत भाव का लक्षण है.
So our goal, one of our goals in Krishna consciousness, is to actually experience these emotions of love of Krishna.
हमारा ये कृष्ण भावना मृत में लक्ष्य क्या है, ये सब जो भाव गुरु महाराज बताए इन सबको अनुभव करना है.
Just like we recited this poem, Gauranga Balite Havi Pulaka Sharir. So this is the hankering of a pure devotee.
भक्त का यही प्यास होना चाहिए कि हमारे में ये सब लक्षण जो है जो गुरु महाराज ने कीर्तन गाया वो सब हम भी ऐसे गाकर अनुभव करें.
When will this day come when I chant Gauranga and I will feel the shivering?
कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान का नाम लूंगा गौरंगा का और हमारे में ये दिव्य लक्षण प्रकट होंगे.
Instead, when we hear the name Gauranga or we go to Bhagavatam class, we go to sleep.
लेकिन क्या होता है जहाँ पर ये लक्षण प्रकट होना चाहिए लेकिन हम कथा सुनते हैं तो कथा में ही सो जाते हैं.
One time Prabhupada was giving Bhagavatam class and everyone was sleeping.
एक बार श्रीला प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे तो जानते हो जितने वहाँ भक्त थे श्रोता के रूप से सब सो गए.
Because the devotees have been up 24 hours a day for the last few days before that preparing for Prabhupada.
लेकिन क्यों सो गए थे, लेकिन वो जितने भक्त हैं श्रीला प्रभुपाद जी के लिए तैयार कर रहे थे क्योंकि आ रहा था तो 24 घंटा वो लोग जागरण करते थे.
And then when Prabhupada looked at all the devotees, he said, this Krishna consciousness movement is going on only by Krishna's mercy.
So Srila Prabhupada ji kehne laga, ye jo Krishna bhavana ka jo andolan hai, ye Bhagwan Krishna ji ke hi kripa se chal raha hai.
Because he understood, with all the devotees sleeping Bhagavatam class, wasn't going on because of their devotion.
Aur kyunki usne dekha ki sab bhakt log so rahe the, bhakti ke karan se nahi, to प्रभुपाद जी ये भगवान कृष्ण की कृपा से चल रहा है.
सो मेनी ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द आचार्यस लाइक नरोत्तमदास सॉन्ग गौरंगा बलिते हवि आर बेस्ड ऑन दिस हैंकरिंग और दिस ग्रीड फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस.
आप देखेंगे ऐसे दिव्य भक्त लोग जैसे नरोत्तमदास ठाकुर इनका जो भजन में है ये लोभ प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति कि कैसे उनमें वो लोभ आ जाए भगवान के नाम रूप के शक्ति के द्वारा.
जस्ट लाइक द सॉन्ग ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर Kabhi habi bolo se dinamar. When will that day be mine?
So ye Bhagwan ki jo shuddh bhakt hai ye apne bhajan mein bolenge wo din kab aayega Bhagwan ki hamare mein ye div lakshan prakat honge.
So we should focus our mind like that. We want to achieve. We are greedy to achieve pure devotional service, to experience the ecstasies.
आप में ऐसा लोभ अगर प्रकट हो जाए कि कब कब मेरे में होगा, और वो लोभ को प्रकट करना ही सबसे गुड़ चीज रह जाता है.
Because everyone wants to be happy, right?
सब कोई तो आनंद में रहना चाहता है.
So when you're Krishna conscious, Kevalananda Kam is only happiness.
And ये जो कृष्ण भावना मृत है यही तो दिव्य आनंद देगा आपको.
So Dhruva Maharaj here is actually experiencing these symptoms of pure devotional service.
तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज है वो ये सब दिव्य लक्षणे वो अनुभव कर रहे हैं.
And we should also experience these things hopefully in the future.
और गुरु महाराज ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब भक्त लोग भविष्य में भी ये सब अनुभव करेंगे.
Okay. Any questions or comments?
ठीक. वे के पास कोई सवाल कोई प्रश्न?
Or arguments?
Yeah. टिप्पणी है?
Sometimes you may not be on a pure devotional platform, as you mentioned, but you can still experience temporarily such such ecstasy.
Yeah.
Are they purified?
रणकिशोर प्रभु पूछ रहे हैं कि कभी कभी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बने हैं मतलब, और ये सब लक्षणे प्रकट हो रहे हैं, तो अगर ये लक्षणे प्रकट हो रहे क्या हम उससे शुद्ध हो जाते पवित्र हो जाते?
Yes, if one has the right understanding of the philosophy.
गुरु महाराज कह रहे हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारा वो जो ज्ञान का जो सही मूल सिद्धांत है तुम समझ रहे हो तब.
Because if one is an impersonalist and think that the ecstasy is due to, you know, merging into Krishna, then his ecstasy degrades at that point.
लेकिन अगर कोई निराकारी रूप से भगवान को मान रहा है और उसमें प्रकट हो रहा है तो उसका जो भाव है वो बताया गया है और विनाशकारी के बल जाएगा.
Because the ecstasy that one experiences in the beginning is not exactly para or transcendental.
शुरुआत में जो भाव हमारे में प्रकट होता है वो एकदम दिव्य स्तर के नहीं है.
So at the same time one has to cultivate knowledge of what we call sambandha gyan.
क्योंकि उसके साथ साथ में हमें ये संबंध ज्ञान जो है भगवान के साथ जो रिश्ता है वो कायम करना पड़ेगा.
We should study Prabhupada's books to understand who is Krishna, what is the jiva soul, what is the material world, what is time, what is karma, etc.
क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा पहचान कौन है, ईश्वर का पहचान कौन है, ये प्राकृतिक का पहचान क्या है, और समय का और तुम्हारा कर्म का, ये सब का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है.
It's like a devotee was telling me yesterday about another devotee who was giving class.
जैसे मुझे एक भक्त बता रहा था कि कोई और एक भक्त कथा कर रहा था.
And he said he only read, I guess, once. So he only knew one verse.
और वो भक्त सिर्फ एक ही श्लोक जानता था.
So the only verse he knew was Deinosmin yatate he komaram jovanam jaratata hanturas prapti dearest tatra namuyati. So every class was about the same verse.
और हर समय जब भी प्रवचन होता है यही गुरु महाराज ने जो श्लोक बोला देहनोस्मित यही श्लोक को बारंबार दोहरा रहा है.
And so the devotee said to him, "Can you speak about something else today?"
वो भक्त जाकर कुछ श्रोता सुनना था जगह बोले मैं आपसे निवेदन करो कुछ और सुनो बताओ.
So one of the things that will help us read more and study Prabhupada's books if we preach, if we explain what we're reading to others.
हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे कब? जब हम लोग कुछ ज्ञान को वितरण करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा और जानने में, क्योंकि आप बताना चाहते हैं.
The reason I know so many verses is because whenever I learned a verse, I went out and preached that verse to others.
गुरु महाराज कहते हैं मैं बहुत श्लोक इसलिए जानता हूँ कि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ मैं वो श्लोक को दूसरे को बताता हूँ.
Anytime I read something that is very interesting, which is everything in Prabhupada's books, I write it down so I can remember to explain it to others.
श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक में हर एक चीज बताया गया है बहुत आनंददायक है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ और लिखने के बाद में मैं इसको अपने मस्तिष्क में उतार लेता हूँ ताकि मैं दूसरे को बता सकूँ.
If you don't preach, what you read will go in one ear and it'll come out the other ear.
अगर तुम प्रचार नहीं करोगे और तुमने पढ़ा है तो इधर से कान में हलेगा उधर से निकल कर चला जाएगा.
So we have to read regularly and preach. These are two things.
तो श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि दो चीज रोज करना है, कि रोज पढ़ना है, रोज प्रचार करना है.
दिस इज कॉल्ड भागवत विधि.
इसको भागवत विधि कहते हैं.
We also have Panchratri ki vidhi, which is the deity worship.
एक और एक विधि है, दो विधि. दूसरा विधि को कहते हैं पंचरात्रिक विधि, जिसको विग्रह की पूजा माना गया है.
But if you simply do Panchratri ki vidhi and not the preaching and studying, you will remain on the lower platform.
लेकिन तुम सिर्फ पंचरात्रिक विधि को पकड़े हो, यानी कि खाली विग्रह है और उसके खाली पूजन कर रहे हो, तो क्या है, तुम कनिष्ठर के कनिष्ठर रह जाओगे.
So you must do both things. The puja and also preaching and reading Bhagavad Vidhi.
तो आपको दोनों करना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़ेगा, यानी कि और आपको संगे संगे प्रचार भी करना ही पड़ेगा.
These are like two rails in which a train runs.
ये दो, जैसे हमारा ट्रेन है ना, दो ट्रेन लाइन पे चलता है, उसी तरह दोनों साथ में.
Just like you have your sugar cane trains here in Fiji.
Fiji में जैसे sugar cane train है.
And so there's two rails.
और उसमें दो लाइन है.
And one rail is broken, what happens with the sugar cane?
एक टूटा, दूसरा क्या होगा, आप सोचिए.
Collapses.
कोलैप्स हो जाएगा.
कोलैप्स हो जाएगा. Don't you have a word in Hindi for collapse? It's Fiji Hindi, I know.
There's chemistry, when we do chemistry.
Yeah.
There's theory and the practical.
Yeah, theory and practical.
We have to do two tests together.
So, yeah. So, one other question. In Hindi, you can ask in Hindi.
I'm sorry, जैसे चाहे टाउन हो, चाहे दुकान हो, चाहे स्ट्रीट हो, चाहे होटल के किचन हो, चाहे बैरे हो, चाहे रिसेप्शन, कई कई तीनों के उनके घुमाने के लिए, उनके हरे कृष्णा गवाने के लिए बात था.
Gurudev is asking that whether it's a street or whether it's a town, whether it's a cafe, it's a market or anywhere, I'm just trying to let them dance and chant the holy name, whether I'm doing right thing or not.
Yes, that's very nice.
Guru Maharaj kare bahut acha kar rahe ho.
But also, give a little knowledge, just at least tell them there's God and we're servants of God. No, the Fijians know that too, that we're servants of God.
Guru Maharaj keh rahe hai ki theek hai tum utna kar rahe ho lekin sange sange gyan do ki bhagwan hai kahin aur bhagwan kaun hai aur ye agar bata sako to aur acha hai.
Just like, you know, the Fijians, they also chant Jesus loves you little children or whatever. You know, God is great, you know. And the Muslims, they're chanting Allah Akbar. So we just encourage them according to their own culture.
तो उनके ही समाज में जो ज्ञान प्रस्तुत है उनके द्वारा वो ज्ञान आप अपना ज्ञान लाकर उनके जो विधान के भीतर है आप ज्ञान दीजिए.
Of course, some people you can't preach to because they'll just commit offenses. That's true.
कुछ कुछ लोगों को आप नहीं प्रचार करें क्योंकि वो अपराध कर देगा.
So just give them some prasadam, let them hear the holy names.
तो उनको प्रसाद दो और भगवान के नाम सुनने दो.
But at least you can preach to your family, your wife.
लेकिन आप प्रचार कर सकते हो अपने परिवार पत्नी को.
एंड इफ यू कैन प्रीच टू योर वाइफ यू आर इन ट्रबल.
लेकिन अगर तुम पत्नी को प्रचार करोगे तो आप बहुत ट्रबल में हो जाओगे, यानी कि बहुत मुसीबत में हो जाओगे.
मे बी यू शुड जस्ट गो व्हाट अरण्य तेन गंतव्यम यथा अरण्यम इच्छाग्रह. मे बी यू शुड जस्ट हेड फॉर द फॉरेस्ट और समथिंग.
उससे अच्छा है आप वन चले जाओ पत्नी को प्रचार करो.
बिकॉज़ चाणक्य पंडित सेज that if your wife doesn't speak pleasingly, then better you head for the forest.
Chanak Pandit ji kehte hain, agar tumhare ghar mein tumhara patni meethe shabdon se, madhurta se baat nahi kare, usse acha jangal bhag jao.
Because your home is already like a forest.
Kyunki jo ghar hai, wo to swayam jangal ho chuka hai.
So you should go to a jungle where you can make spiritual advancement.
To ghar la jangal chhod ke chupe aap sahi jangal mein chala jao. वहां पर आपके आध्यात्मिक उन्नति होगा.
ओके, ऑलराइट, दिस इज टाइम फॉर प्रसादम नाउ.
ठीक, प्रसादम के समय है.
ऑल ग्लोरी टू हिज डिवाइन ग्रेस. श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय. Whoops. So everybody pick up that. Okay. Sabha Sabha Yatra Ki Jaya.